आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
नमस्कार, नमस्ते, सुस्वागतम। मेरा नाम है स्वाति शर्मा और SBS के मेलबर्न स्टूडियो से हिंदी कार्यक्रम लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ आज यानी शुक्रवार 24 अप्रैल 2026 को। आज है साल का 114वां दिन। हमेशा की तरह आइए सबसे पहले आज के प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं। इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के बुरुंजुरी और विवरुण लोगों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हुए, साथ ही जिनकी भूमि से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है उन सभी मूल निवासियों और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों का भी हम आदरपूर्वक सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, प्रोग्राम में आज क्या क्या होगा उसके लिए आइए एक फटाफट नजर डाल लेते हैं आज के प्रोग्राम की रूपरेखा पर। सबसे पहले सुनेंगे देश दुनिया की मुख्य खबरें और भारत की सुर्खियां भी होंगी। आज जानेंगे कि एज केयर सिस्टम में जो कुछ नई घोषणाएं हुई हैं उनसे बुजुर्ग ऑस्ट्रेलियाई लोग कैसे प्रभावित होंगे। साथ ही एक खास अंश होगा एनजेक डे के बारे में। देश भर में कल यानी 25 अप्रैल को मनाया जाएगा एनजेक डे और उसी उपलक्ष्य में SBS हिंदी फ्लैशबैक से एक अंश आपके लिए लाऊंगी जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई इतिहासकार बताएंगे गलिपले अभियान में भारतीय सैनिकों की भूमिका के बारे में। फिर आज मैं आपको ले चलूंगी चंपावत और नैनीताल जिले के एक मशहूर पर्यटन स्थल की सैर कराने और आखिर में शो के मूड को बनाएंगे संगीतमय कुछ प्यारे से गीतों के साथ। शुक्रवार है तो गीतों में कुछ मस्ती भी होगी ही। तो अगर आपकी भी कोई गीत की फरमाइश हो मुझे अभी लिख भेजिए। नंबर है 04397997667 और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज ही के शो में उसे बजा भी दूं। अपने संदेशों के जरिए अपनी मौजूदगी का एहसास भी मुझे आपको कराते रहना है। बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में और आज के शो का सवाल भी होगा कुछ खास सा, पर आइए सबसे पहले ले लेते हैं एक जायजा आज के मुख्य समाचारों का। नमस्कार, शुक्रवार 24 अप्रैल 2026 के मुख्य समाचारों के साथ मैं हूं स्वाति शर्मा। व्यापार मंत्री डॉन फेरल का कहना है कि नई रिफाइनरियां बनाना मौजूदा ईंधन दबाव का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के पास अब 46 दिनों का ईंधन उपलब्ध है जिसमें डीजल की दो नई खेप शामिल हैं जिनकी कुल मात्रा 100 मिलियन लीटर है। मंत्री फेरल ने कहा कि इसमें से 50 मिलियन लीटर क्षेत्रीय क्वींसलैंड जिसमें टाउन्सविल, ग्लैडस्टोन और मैके शामिल हैं को जाएगा। नेशनल्स के नेता मैट कैनवन का कहना है कि गैस निर्यात पर 25% कर उद्योग को खत्म कर देगा। ग्रीन्स के नेतृत्व वाली सेनेट जांच आज इस मुद्दे पर उद्योग के अधिकारियों से सवाल कर रही है जिस बीच मई बजट में गैस निर्यात पर 25% कर की मांग जारी है। अमेरिका ने ऑकस सुरक्षा समझौते के तहत पहला पनडुब्बी अनुबंध मंजूर कर लिया है। अमेरिकी कंपनी इलेक्ट्रिक बोट इस पोत का निर्माण करेगी जो 275 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के सौदे का हिस्सा है। 2011 में हस्ताक्षरित ऑकस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन और अमेरिका के सहयोग से परमाणु संचालित पनडुब्बियां हासिल करेगा। वालमाजारी कलाकार जॉन प्रिंस सिडन की 15 मीटर लंबी एक कलाकृति का अनावरण सिडनी के म्यूजियम ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट के फॉयर में किया गया है जहां यह 2 वर्षों तक रहेगी। यह कृति संघर्ष झेल रहे बच्चों को समर्पित है और इसमें सेसमी स्ट्रीट के पात्रों के साथ साथ कंगारू, पक्षी और रीफ मछलियां दिखाई गई हैं। देश भर में कल होने वाले एनजेक डे के लिए तैयारियां जारी हैं। न्यू साउथ वेल्स पुलिस का कहना है कि सिडनी सीबीडी में अपेक्षित भीड़ को संभालने के लिए 450 अधिकारी तैनात किए जाएंगे। सूर्योदय के साथ कई समुदायों में डॉन सर्विसेज आयोजित होंगी जिसके बाद मध्य सुबह स्मरण समारोह होंगे और दोपहर में कई स्थानों पर टू अप खेला जाएगा, वह खेल जो साल के बाकी हर दिन अवैध होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे मध्य पूर्व में युद्ध समाप्त करने के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे जबकि यह पहले ही निर्धारित 4 से 6 सप्ताह की समय सीमा से आगे बढ़ चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच गतिरोध ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां शांतिकाल में दुनिया के 20% तेल का व्यापार होता है, के माध्यम से लगभग सभी निर्यात को प्रभावी रूप से रोक दिया है और इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। वहीं व्हाइट हाउस में हुई वार्ता के बाद इसराइल और लेबनान ने युद्ध विराम को 3 सप्ताह के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई है। प्रारंभिक 10 दिवसीय युद्ध विराम, जो 17 अप्रैल से लागू हुआ था, सोमवार 27 अप्रैल को समाप्त होने वाला था। और अब खबर भारत से। रॉयटर्स से मिले समाचार के अनुसार सोने की कीमतें शुक्रवार को गिर गईं और साप्ताहिक गिरावट की ओर बढ़ रही हैं। यह गिरावट अमेरिका ईरान शांति वार्ता के ठप पड़ने के बीच देखने को मिल रही है, जिसके कारण ऊंची तेल की कीमतों ने महंगाई और लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों के बने रहने की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। खबर लिखने तक स्पॉट गोल्ड 0.7% गिरकर $4,661.33 प्रति औंस पर आ गया। 4 सप्ताह की बढ़त के बाद इस सप्ताह अब धातु 3.5% नीचे है। ईरान युद्ध विराम के विस्तार के बावजूद प्रमुख स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के काफी हद तक बंद रहने के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतें इस सप्ताह अब तक 17% से अधिक बढ़कर $105 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं। आज के लिए मुख्य समाचारों में बस इतना ही। अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए SBS हिंदी के साथ, हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi या फिर SBS हिंदी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के जरिए। धन्यवाद। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब बारी है शो की अगली रिपोर्ट की, जहां हमें नबील हसन बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एज केयर सिस्टम को लेकर हाल ही में जो घोषणाएं हुई हैं, उनके साथ फंडिंग, लंबी वेटिंग लिस्ट और अन्य चुनौतियों की चर्चा क्यों फिर से तेज हो गई है और कैसे ये बदलाव बुजुर्ग ऑस्ट्रेलियाई लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। आइए जानते हैं नबील हसन की इस रिपोर्ट में।
हाल ही में नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम यानी NDIS काफी चर्चा में रही, जिसे लेकर फेडरल सरकार ने कुछ कटौतियों की घोषणा की है। अनुमान है कि इससे हजारों लोग इस स्कीम से बाहर हो सकते हैं, लेकिन एजेड केयर सेक्टर में भी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। निवासियों, परिवारों और वकीलों की बड़ी संख्या में शिकायतों के बाद सरकार ने अब शावरिंग के फंडिंग से जुड़ी अपनी पॉलिसी को वापस ले लिया है। SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन।
The system being introduced on the 1st of November is the biggest reform to aged care in a generation. It is a very substantial package of reforms.
ये स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने सितंबर 2025 में कहा था, जब वो सरकार के नए सिस्टम के बारे में बयान दे रहे थे, जिसके तहत ज्यादा बुजुर्ग ऑस्ट्रेलियंस को अपनी एजेड केयर सर्विसेज के लिए आर्थिक योगदान देना होगा। ओल्डन पर्सन्स एडवोकेसी नेटवर्क यानी OPAN की पॉलिसी डायरेक्टर समांथा एडमंड्स कहती हैं कि इस प्रक्रिया का पहला कदम ये है कि व्यक्ति का असेसमेंट किया जाए, ताकि ये समझा जा सके कि उन्हें किस तरह की देखभाल की जरूरत हो सकती है।
After their assessment, they get given a list of services that they can purchase from that package.
इन रिफॉर्म्स के तहत जिन लोगों को पर्सनल केयर सर्विसेज दी जाती हैं, उनके लिए ये साफ तौर पर तय किया जाए कि कौन कितना खर्च करेगा और पूरा खर्च सरकार नहीं उठाएगी। नेल्सन मा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी एजिंग रिसर्च कोलैबोरेटिव टीम से जुड़े हैं।
The government will continue to pay the clinical component, but then all the other components, so we are here, we're talking about the non-direct care components, so laundry, catering, cleaning costs, as well as part of the accommodation costs, depending on the means of the resident, those types of things will start to be covered to a greater degree by the recipient of care.
लेकिन इस फंडिंग के फैसले ने वकीलों के बीच चिंता पैदा कर दी। एजिंग ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम साइमनसन उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने कहा कि जो सबसे बुजुर्ग ऑस्ट्रेलियाई पहले से ही कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर्स की वजह से मुश्किल में हैं, उनकी स्थिति और खराब हो सकती है।
We did not want to see older people sacrificing showering, basic hygiene and dignity because they couldn't afford it. And we've seen too many older people doing just that, sacrificing showers, having fewer showers per week.
अब सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने नेशनल प्रेस क्लब में दिए एक भाषण में कहा कि अब सरकार शावरिंग सपोर्ट्स का खर्च उठाएगी। इसके लिए बुजुर्ग ऑस्ट्रेलियंस के लिए प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पर दी जाने वाले सब्सिडीज को खत्म किया जाएगा।
I understand this won't be a welcome decision for many, but it is the right thing to do to re-establish intergenerational equity in the rebate system and also to free up funding that we need to provide more dignity and more care to older Australians.
Tom Simonson ka kehna hai ki ye sahi kadam tha.
You know, it's unfortunate that it's not happening until October, but it's still a really good outcome that will benefit hundreds of thousands of older Australians right now and millions over the coming years.
लेकिन कई अन्य बड़े मुद्दे भी अभी बने हुए हैं. एजेड केयर असेसमेंट्स के लिए वेटिंग लिस्ट अभी भी काफी लंबी है. जब असेसमेंट पूरा हो जाता है तो गवर्नमेंट सर्विसेज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्ग ऑस्ट्रेलियंस को होम सपोर्ट सर्विसेज पाने के लिए औसतन 9 महीने तक इंतजार करना पड़ता है. इसमें शावरिंग, मील प्रिपरेशन और क्लीनिंग जैसी सेवाएं शामिल हैं. समांथा एडमंड्स के अनुसार इसका मतलब ये है कि व्यक्ति की स्थिति और बिगड़ सकती है, जिससे उन्हें होम बेस्ड एजेड केयर से पूरी तरह बाहर जाना पड़ सकता है. वो कहती हैं कि असेसमेंट प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले एल्गोरिथम हमेशा सही नतीजा नहीं देता.
What we've been informed and what we're seeing through our cases is that when people seek a reassessment, they're actually then assessed as needing less, even though they need more in terms of services, and that some priorities don't seem right either, like people that should be a high priority are getting a medium priority.
इसके अलावा एक और समस्या है जिसे बेड ब्लॉक कहा जाता है, जहां लंबी वेटिंग लिस्ट की वजह से लोग अस्पताल में ही फंसे रह जाते हैं. यूनाइटिंग केयर एनएसडब्ल्यू एसीटी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पैट्रिक रीड ने पहले भी कहा है कि ये एक बहुत ही आम और बार बार होने वाली समस्या है.
We know that there are a number of hospitals around the country which are experiencing delayed discharge, where people are languishing in hospitals for long periods of time and do not have access to either residential aged care or to return home.
इन देरियों की एक बड़ी वजह भारी डिमांड भी है. होम बेस्ड एजेड केयर के लिए वेटिंग लिस्ट में 2,34,000 से ज्यादा लोग हैं, जिनमें लगभग 1,03,000 बुजुर्ग ऐसे हैं जो अभी सिर्फ असेसमेंट का इंतजार कर रहे हैं. सरकार का कहना है कि वो डिमांड को पूरा करने और बुजुर्ग ऑस्ट्रेलियंस को जरूरी सेवाएं देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. मार्क बटलर का कहना है कि होम बेस्ड एजेड केयर के लिए नया फंडिंग मॉडल पुराने तरीके की तुलना में बेहतर साबित हो रहा है.
We've also been closely monitoring the rollout of the new support at home program that started last year. This program is undeniably delivering improvements to the system. It's delivering more packages, better quality packages, and it's reducing wait times.
इस बीच टॉम साइमनसन का कहना है कि वो होम बेस्ड एजेड केयर प्रक्रिया में सुधार के लिए लगातार एडवोकेसी करते रहेंगे.
We will be pushing to make sure that the government continues to review whether there are other things that older people are not doing that might be in their interests because they can't afford them. So we'll be continuing to look at whether there are other things that they can take charges away from to make sure that older people get the best outcomes.
SBS News के डेबरा ग्रोर की ये रिपोर्ट SBS हिंदी पर आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने.
तो दोस्तों, शो में इस रिपोर्ट के बाद अब वक्त हो गया है पहले अंतराल का. मैं मिलती हूँ आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद, जहाँ हम जानेंगे भारत की बड़ी खबरें. जुड़े रहिए SBS हिंदी के साथ. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. SBS हिंदी पर आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ. दोस्तों, प्रोग्राम में अब वक्त है भारत की सुर्खियों का रुख करने का. तो आइए एक जायजा लेते हैं विश्वरत्न श्रीवास्तव के साथ, क्या कुछ हो रहा है भारत में.
रिपोर्ट की शुरुआत चुनावी चर्चा से. पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान हुआ है. पश्चिम बंगाल की 294 में से 152 सीटों के लिए गुरुवार को वोट डाले गए. लगभग 92% मतदाताओं ने अपने अधिकार का उपयोग किया. कुछ जगहों पर हिंसा, डराने धमकाने और ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई. इसके बावजूद कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण ही रहा. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने बढ़े हुए मतदान को लेकर कहा,
वोटिंग प्रोसीजर अक्रॉस द कंट्री बढ़ रहा है. बंगाल में तो हमेशा ही कॉन्शियसनेस हाई रहा है, हमेशा ही जो है वोटिंग परसेंटेज कंट्रीज ज्यादा रहता है, इस बार भी वो ज्यादा रहेगा.
तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है. ताजा आंकड़ों के अनुसार लगभग 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले. ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है. अब पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान बाकी है. 29 अप्रैल को होने वाले इस मतदान के लिए प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए वोट मांगने के लिए बंगाल में जगह जगह रैली कर रहे हैं. गुरुवार को उन्होंने मथुरापुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया. टीएमसी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए वे कहते हैं,
15 साल में टीएमसी ने बंगाल को क्या दिया? केवल झूठे वादे और धोखा। बाढ़ से निपटने के लिए टीएमसी ने गाटल मास्टर प्लान लाने का वादा किया था, क्या मिला? धोखा। टीएमसी ने 2000 बड़ी इंडस्ट्री लगाने की बात कही थी, क्या मिला? धोखा। हर बार चुनाव के समय वादा और चुनाव के बाद गायब। टीएमसी वर्षों से इसी फॉर्मूले पर चल रही है।
प्रधानमंत्री मोदी आज कोलकाता में 2 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। वहीं भाजपा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पूरा जोर लगाए हुए हैं। टीएमसी पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा उन्होंने उठाया।
मोदी जी ने राम मंदिर बनाया और ये ममता दीदी इसके चेले चपाटे हुमायूं से बाबरी मस्जिद बनाना चाहती। ममता दीदी कान खोल कर सुन लो, ये बंगाल भारत की भूमि है। जब तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, हम बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे।
टीएमसी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। भाजपा नेताओं पर उसने बंगाल की भाषा संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी का नाम अपमानजनक तरीके से लेने का आरोप अमित शाह पर लगाया जा रहा है। ज्यादातर जगहों पर दोनों ही पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला है। कुछ जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने मुकाबले को त्रिकोणी बनाया हुआ है। भारत और जर्मनी रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर आपस में चर्चा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जर्मनी दौरे ने सहयोग की संभावनाओं को और बढ़ा दिया है। गुरुवार को म्यूनिक में डिफेंस इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा,
आई वुड इनकरेज ऑल पार्टिसिपेंट्स टू लुक एट दिस एंगेजमेंट विद ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड अ पार्टनरशिप इन द डिफेंस सेक्टर रिक्वायर ट्रस्ट कमिटमेंट एंड अ शेयर्ड विजन। They require investment not just in capital but in relationships. India is ready for such partnership and we are also open to new ideas, new model of collaboration and new approaches to innovation.
भारत और जापान के बीच भी लगातार रक्षा सहयोग को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। भारत ने कहा है कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। जापान ने प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाले अपने ढांचे की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसका भारत ने स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा,
इंडिया वेलकम्स जापान्स रिव्यू ऑफ द 3 प्रिंसिपल्स ऑन ट्रांसफर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। Defense and security cooperation forms an important pillar of India-Japan special strategic and global partnership. As part of the joint declaration on security cooperation between India and Japan, both sides have committed to increase practical cooperation in the interest of their national security and continued economic dynamism. This includes promotion and facilitation of technological and industrial collaboration between the government entities and private sector stakeholders for resilience in sectors critical to national security. So, we welcome the steps that have been announced by Japan.
पश्चिम एशिया में शांति बहाली के प्रयासों के प्रति भारत ने अपना समर्थन जताया है। इस बारे में पूछे गए सवाल पर रणधीर जायसवाल कहते हैं,
जहां तक पश्चिम एशिया का सवाल है, वहाँ जो संघर्ष चल रहा है उस पर हमारी नीति बहुत साफ है कि हम हमेशा से शांति के पक्ष में खड़े रहते हैं और शांति के पक्ष में शांति के पहल के लिए कोई भी कदम उठाए जा रहा है या उठाया जाएगा उसका हम समर्थन करते हैं। इसके अलावे हम लोगों ने हमेशा से ये कहा है कि कोई भी मसला हो, कोई भी संघर्ष हो, कोई भी मतभेद हो, उसको डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से यानी कूटनीति और संवाद के माध्यम से सुलझाना चाहिए। तो ये हमारा पक्ष है और यही हमारा भारत का पक्ष है अभी।
और अंत में चर्चा बिहार की। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया है। राज्य की राजनीति में यह पहला मौका है जब भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा में बहुमत साबित करेगा। संख्या बल के हिसाब से सम्राट चौधरी मजबूत स्थिति में हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
SBS हिंदी पर आप जुड़े हुए हैं इस वक्त स्वाति शर्मा के साथ। तो भारत की रिपोर्ट के बाद अब वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद हम बात करेंगे एनजेक डे की और गलीपुरी अभियान में भारतीयों के योगदान की। हाजिर होती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। SBS हिंदी पर आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ। मेरे पास राजेंद्र जी आपका मैसेज आ गया है। कहते हैं, स्वाति जी नमस्कार, आज के प्रोग्राम में मेरी पसंद का गाना आशा भोसले का गाया हुआ देख हमें आवाज न दे ना ओ बेदर्द जमाने। मैंने इसे ढूंढने की कोशिश की पर यह नहीं मिला मेरे सिस्टम पे, तो अगर आपकी कोई और फरमाइश हो तो आप मुझे ज़रूर लिख भेजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर मुझे मिल जाए तो मैं आज ज़रूर बजा दूँ। तो प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे। एक ऑस्ट्रेलिया इतिहासकार का मानना है कि 1915 के गैलिपोली अभियान में भारतीय सैनिकों ने एक अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन क्या आज उनके योगदान को उतनी पहचान मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए, या फिर कहीं पे भुला तो नहीं दिए गए? 2024 में लिए गए इस साक्षात्कार में आइए सुनते हैं इस इतिहासकार का इस बारे में क्या कहना है। इस अंश को आप तक लेकर आ रही हूं मैं SBS हिंदी फ्लैशबैक से।
नमस्कार, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से, और आज हम बात कर रहे हैं एनजैक दिवस की। एनजैक दिवस पर ऑस्ट्रेलिया गैलिपोली युद्ध में मारे गए अपने लोगों को और उन अन्य देशों के लोगों को याद करता है जो ऑस्ट्रेलियाई सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। इतिहास गवाह है कि 16,000 भारतीय सैनिक गैलिपोली में एनजैक के साथ लड़े थे, जिनमें से 1600 युद्ध में हताहत हुए। इस विषय पर न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर स्टैनली का तर्क है कि गैलिपोली अभियान में भारतीय सेना की भागीदारी को भुला दिया गया है। इससे पहले प्रोफेसर स्टैनली ने कैनबरा में स्थित ऑस्ट्रेलिया वॉर मेमोरियल के लिए लगभग 3 दशकों तक काम किया था, और उनकी किताब डाई इन बैटल डू नॉट डिस्पेयर द इंडियंस ऑन गैलिपोली 1915 शायद पहली ऐसी किताब होगी जो गैलिपोली में भारतीय सैनिकों के योगदान का गहरा वर्णन देती है।
I published Die in Battle, Do Not Despair in 2015, centenary, 100th anniversary of Gallipoli. But books take a long time to circulate, and even 9 years later, people are picking up on the story that I told. The book took a couple of years because I'd started work in 2013 as a research professor at UNSW Canberra, and that meant that I could focus on what I wanted to research, and I wanted to research Indians on Gallipoli. But I did that because I'd been interested in Indians on Gallipoli for 30 years before that. So in a sense, the book took 2 years, and in another sense, it took 35 years.
What was the reason behind picking up a subject on Indian soldiers in Gallipoli?
I've always, since I was a teenager, I've been interested in India, and that's been one of the strands in my research. My PhD was on British soldiers in India in the 19th century. So I did that topic, that research, in order to travel to India. I've been to India a lot, and I've done half a dozen books, 5-6 books on Indian military history. So I'd always been interested in India, and here my two interests coincided, my interest in British India and the work I'd done for 30 odd years on Australian military history just crossed over on Indians on Gallipoli. Gallipoli and war commemoration generally has always occurred within the context of national identity. So Australian war memorials tend to only talk about memorials. Australian books on military history tend to talk only about Australians. And it wasn't really, it hasn't really been since the 21st century where people started to notice that other countries were involved in these experiences too. So Gallipoli studies, as you might call it, became internationalized in the 21st century, and we started to see stories of both sides, Turkish, Ottoman Turkish, British Empire, and Australians and New Zealanders and British started to look at other people's experiences. So in a sense, the book Die in Battle came along as part of that trend, where an Australian historian told an Indian story, partly because there are many more military historians in Australia than there are in India, but also the sources for Indian military history are largely not in India. And the sources I used, the Indian sources are vital, but most of the sources are actually in Britain, in London, the war diaries, and in Australia and New Zealand, the personal letters and diaries of soldiers that have been preserved. There are almost no personal records preserved in India. So I suppose if the story was to be told, it had to be told by somebody who wasn't Indian.
And I'm sure there are a lot of books about Gallipoli War, but is there any specific book on Indian soldiers' role in Gallipoli War, apart from your own book?
There's beginning to be. Squadron leader Rana China of the United Services Institution of India, who works in New Delhi, he's researched and written about Australian Indians on Gallipoli. And there is now a book in press by a retired colonel of the Indian Army, which goes over that subject. There's no book in Pakistan, for example, that appears to, that deals with the experience of the Punjabi Muslim soldiers who were on Gallipoli, because there were Punjabi Muslims, Sikhs, and Gurkhas among mostly.
So technically there are only two books.
Yeah, a couple of books, maybe another one by the end of the year. But it's extraordinarily neglected. But it's understandable in one way. I mean, that the Gallipoli is a very small business for India. Mm. Gallipoli is really big for Australia, so it wouldn't be surprising that Australians focus on Gallipoli. And really, it's a specialist interest in India, and especially because the Indian Army was organised around ethnic groups. If you know, there were no troops from Maharashtra, there were no troops from Bengal, there were no troops from South India. Why would people from those parts of India be interested in the experiences of Sikh soldiers? So Indian military history, and indeed Indian history, is still very much focused on the community or the ethnic group, and not the national experience.
How important it is to tell the story of Indian soldiers?
I think it's important,
especially now when the diaspora is growing.
Yeah, exactly. That's one important reason that Indians are now such an important and growing part of Australia, that Australians ought to recognise that Indians are a part of what we've traditionally seen as Australian military history.
Yeah.
But Indians also, I think, are looking to feel a part of this significant part of Australia's history. It's also important, I think, for fairness, that they're all dead. They're all commemorated equally on Gallipoli. The Indians are named along with the British and Australians. But somehow in history, the Indians have missed out. And just my sense of fairness tells me that they ought to be accorded the respect of being acknowledged, at least.
रिटायर्ड कर्नल राजेश कासवां जो इंडियन आर्मी के पूर्व अधिकारी रहे हैं और अब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं कहते हैं भारतीय सेना की भागीदारी के बारे में चर्चा करनी जरूरी है।
नमस्कार जी, मैं कर्नल राजेश कासवां रिटायर्ड इन्फेंट्री से हूं, सिख लाइट इन्फेंट्री। हमारे सभी सोल्जर्स बहादुर सरदार जवान होते हैं। मैं दिसंबर 1990 में कमीशन हुआ था और मैं बहुत ही लकी था कि मैंने फर्स्ट सिखलाई बटालियन कमांड करी। उसके बाद 20 साल के बाद मैं यहाँ पर मूव हो गया और ऑस्ट्रेलिया में अभी मैं परमानेंटली सेटल्ड हूँ। मैं रहता मेलबर्न में हूँ लेकिन मैं काम क्वींसलैंड में करता हूँ, इसलिए कभी कभी मैं किसी फंक्शन पर मेलबर्न में, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेज से रिलेटेड होता है या एनजेक डे परेड वगैरह होती है, नहीं अटेंड कर पाता हूँ। हमारे लगभग 16,000 से भी ज़्यादा बहादुर सैनिकों ने वहाँ पर जो है अपने देश के लिए, अपने जिस फ्लैग के नीचे वो लड़ रहे थे उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसमें से काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी और इंडियन डिफेंस फोर्सेस के जो सोल्जर्स थे उनकी जो कैजुअल्टी रेट है वो एक सबसे ज़्यादा उनमें से था। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये पब्लिक अवेयरनेस फैलेगी और इंडियन डिफेंस फोर्सेज के जो बहादुर जवान थे उनकी बैटल ऑफ गैलीपोली में उनका कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा रिकग्नाइज किया जाएगा और इससे हमें बहुत ही फख्र की बात होगी कि उनका कंट्रीब्यूशन रिकग्नाइज करें पब्लिक लेवल पर और अलग अलग फंक्शंस के दौरान। थैंक यू।
आपको बता दें ये साक्षात्कार पहली बार 23 अप्रैल 2024 को प्रकाशित किया गया था।
दोस्तों इसी के साथ आज के शो का आखिरी ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ले चलूंगी चंपावत और नैनीताल जिले के एक मशहूर पर्यटन स्थल की सैर कराने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। SBS हिंदी पर आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। एक अंग्रेजी गाना है जिसे सुनकर आपको मुझे बताना है कि ये कौन से हिंदी गाने की आपको याद दिलाता है। तो अपने जवाब मुझे भेज दीजिए। नंबर है 04397997767। कुछ जवाब मेरे पास आए भी हुए हैं हर्षवर्धन शर्मा जी का और अभय जी। आप दोनों के जवाब मुझे मिल गए हैं। बताती हूँ कुछ देर में क्या है इसका सही जवाब। इसके अलावा राजेंद्र जी आपने एक और गीत की फरमाइश की है, आशा भोसले जी का ही गाया हुआ गाना आप जाइए आप कहाँ जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आज मैं इसे बजा दूँ। और तो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। SBS हिंदी फ्लैशबैक से एक और खास अंश आपके लिए आज मैं लाई हूँ। भारत के उत्तराखंड में चंपावत अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत तथा ज्योलीकोट अलौकिक शांतिपूर्ण अनुभूति के लिए जाना जाता है। आइए इस अंश में कुमाऊं के इतिहास में विशिष्ट स्थान रखने वाले चंपावत और नैनीताल जिले के पर्यटन स्थल ज्योलीकोट के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत कर रही हैं अनीता बरार।
भारत एक बहुत ही विशाल देश है और हमेशा से विश्व में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी संस्कृति भौगोलिकी और सुंदरता में विविधता है। यहाँ बहुत से मनमोहक और अछूते स्थान हैं जो पर्यटकों को आमंत्रित करते हैं और आकर्षित करते हैं। विश्व भर से पर्यटकों के अलावा सारी दुनिया में बसे प्रवासी भारतीयों के लिए भी भारत चहेता है। सभी लोग समय निकालकर भारत की यात्रा करते रहते हैं और इसके दर्शनीय स्थलों की तरफ आकर्षित होते रहते हैं। तो भारत के दर्शनीय स्थलों की यात्रा में आइए आज चलते हैं उत्तरांचल में चंपावत और ज्योलीकोट की तरफ। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग का राज्य है उत्तरांचल राज्य। इसके कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र में फैली हुई बड़ी विशाल पवित्र पर्वत श्रृंखलाएं जैसे इसका ताज हैं। इस राज्य में भारत के कुछ बहुत ही मनोहरी पर्यटक और धार्मिक स्थल हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली से अगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करते हुए उत्तरांचल की ओर बढ़ें तो बहुत ही शांति और ताजगी का एहसास होता है क्योंकि हवा में ठंडापन आना शुरू हो जाता है और उस ठंडेपन से ये एहसास भी होने लगता है कि पर्वत अब शायद पास ही हैं। रास्ते में सागौन के पेड़ से पत्ते भी झड़े हुए मिल सकते हैं। ये पत्ते मोटे और बहुत ही मुलायम होते हैं और पूरे रास्ते में छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में जैसे लटके हुए बादलों के टुकड़े ये सब बहुत ही सुंदर दिखता है। बनबासा, टनकपुर और चंपावत, सुनने में ये नाम कितने कर्णप्रिय लगते हैं। ये सब मशहूर कॉर्बेट प्रदेश का भाग हैं, जहां पर प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट ने अपनी बंदूक से आदमखोर बाघों से कुमायूं के गांवों को मुक्ति दिलाई थी। चंपावत शायद आदमखोर बाघों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था और इसीलिए कॉर्बेट साहब यानी जिम कॉर्बेट को कॉर्बेट साहब के नाम से यहाँ पर बहुत याद किया जाता है और ऐसा भी कह सकते हैं कि वो यहाँ पर श्रद्धेय समझे जाते हैं। इस शहर में और इस क्षेत्र में स्तंभ लगे हुए हैं जो यहाँ पर आने वाले लोगों को उस स्थलों के बारे में बताते हैं, और खास तौर से एक वो स्थल जहाँ पर एक विशेष आदमखोर जिम कॉर्बेट के हाथों का निशाना बना था। इतिहास के प्रश्नों में चंपावत एक प्राचीन नगर है। ये नगर अनेक कुमायूं शासकों द्वारा राजधानी चुना गया, और इनमें राजा सोमचंद भी शामिल हैं जो चंद्रवंश का संस्थापक माना जाता है। इस क्षेत्र में अनेक किंवदंतियां मौजूद हैं, लेकिन एक रोचक कथा है कि इसका अंतिम शासक बहुत ही क्रूर और लोभी था, इसलिए उसे असंतुष्ट जनता ने पहाड़ से नीचे फेंक दिया, और एक नए राजा के चुनाव के लिए स्थानीय लोगों ने कन्नौज के एक राजकुमार को चुना, जिसका विवाह भूतपूर्व चंपावत शासक की राजकुमारी से किया गया और उसे फिर राजा बना दिया गया। लेकिन यहाँ के वासी इस धारणा का विरोध करते हैं। वो राजकुमार के कन्नौज होने पर तो सहमत हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब वो इस क्षेत्र में तीर्थ यात्रा के लिए आया था तो चंपावत के शासक को वो पसंद आ गया और उसने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया, और इस क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग जो है उसे दहेज के रूप में दे दिया गया। खैर, इन धारणाओं की प्रामाणिकता चाहे सिद्ध हो या ना हो, लेकिन इस नगर में एक प्राचीन आकर्षण अवश्य मौजूद है, शाही दुर्ग, जो शायद इस नगर के किसी शीर्ष काल में ही बना होगा। आज उसका केवल एक प्रवेश द्वार, कुएं के अवशेष और नागनाथ का मंदिर बचा है। दुर्ग के पास ही एक शिव मंदिर बना हुआ है, और उसका आंगन भक्तजनों के त्रिशूलों से भरा हुआ है। शहर के मध्य में एक बालेश्वर मंदिर समूह है। बालेश्वर हिंदू भगवान शिव का एक अन्य रूप है, जो हिंदू त्रिमूर्ति के संहारकर्ता माने जाते हैं। ये मंदिर समूह इतिहासकारों और कला प्रेमियों के लिए बहुत ही रोचक स्थल है, क्योंकि इसका निर्माण विन्यास गुजराती वास्तुशिल्प से प्रेरित है, जो सोलंकी राजाओं के शासनकाल के दौरान प्रचलित था। खंडहर बन चुके इस मंदिर समूह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ शासन करने वाले राजाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस क्षेत्र में अपनी धन संपदा छिपाकर रखी हुई थी, जिसके कारण पड़ोसी रोहिलखंड के लुटेरों ने इस पहाड़ी साम्राज्य पर कई हमले किए, और इन हमलों की वजह से यहाँ के मंदिर और उसमें स्थापित प्रतिमाएं तहस नहस हो गईं। आज इस मंदिर समूह की मौजूदगी का श्रेय स्थानीय संरक्षण को जाता है, जिसका कारण इसका प्राचीन महत्ता को कायम रखना है या फिर धार्मिक महत्व, ऐसा तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये ऐतिहासिक धरोहर कायम रहे इसके प्रयास बाकायदा जारी हैं। नैनीताल से कोई 17 किलोमीटर पहले कुमायूं पर्वतमाला में एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा है, ज्योलीकोट, अलौकिक सौंदर्य से भरपूर। काठगोदाम से ज्योलीकोट लगभग 18 किलोमीटर है। यहाँ पर छोटे छोटे ट्रैकिंग मार्ग हैं। ज्योलीकोट एक बिल्कुल ही अछूता पर्यटन स्थल है, जिसके कारण ये और भी विशेष है। बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद साधना के लिए यहाँ पर आया करते थे। इसके अलावा यहाँ से बाकी के पर्वतीय स्थल जैसे नैनीताल, बिनसर, कौसानी और रानीखेत की अद्भुत मंदिर नगरी की यात्रा की जा सकती है, और ज्योलीकोट से कुछ घंटों में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी पहुंचा जा सकता है। तारों को निहारने के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध वेधशाला है, और खेलों में रुचि रखने वालों के लिए गोल्फ का मैदान तो है ही। ज्योलीकोट के चारों ओर के पर्वतों में छोटे छोटे मंदिर और छोटी छोटी निर्माण रचनाएं हैं, और हरेक के पीछे कोई ना कोई कहानी अवश्य छिपी हुई है। जोलीकोट की खास बात यह है कि यहाँ से हिमालय पर्वत श्रृंखला का 180 डिग्री का दृश्य देखने को मिलता है। किसी भी साफ खुले दिन यहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल और नंदा कोट के शिखर भी देखे जा सकते हैं। पर्वतों में सुबह जल्दी हो जाती है तो सूर्योदय के समय आकाश में नारंगी रंग की छटा देखने लायक होती है। तो ऐसा है अलौकिक सौंदर्य से भरपूर उत्तरांचल प्रदेश।
SBS हिंदी पर आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ। इस सुंदर प्रस्तुति को आप तक लेकर आई थी अनीता बरार। तो दोस्तों, प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव है और हम शुरू कर रहे हैं सुरों की महफिल। सबसे पहले मैं आज राजेंद्र जी की फरमाइश का जो गाना है वो चला देती हूँ। गाना है, गाया है आशा भोसले जी ने और बोल है जाइए आप कहाँ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। अगला गीत है उस सवाल का जवाब जो आज मैंने आपसे पूछा था। मैंने आपसे पूछा था कि ये गीत सुनकर आपको कौन से हिंदी गीत की याद आती है। तो इसका सही जवाब मेरे पास बहुत सारे लोगों ने भेजा। असद अहमद, उन्होंने एडिलेड से भेजा और साथ में कहते हैं कि आपका शो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, ये सॉन्ग मुझे रिमाइंड कराता है हिंदी गाने की जो मैं अभी बजाने लगी हूँ। और उन्होंने फरमाइश भी की है कि प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग फॉर माई वाइफ इन टुडेज शो। इसके अलावा मेरे पास मैसेज आया हर्षवर्धन शर्मा जी का, जिन्होंने सही जवाब भेजा। और अभय जी, आपका भी जवाब बिल्कुल सही था, तो सही गाना है ये। बढ़ते हैं अपने अगले गाने की तरफ। शो के खत्म होने का समय भी हो रहा है तो उम्मीद है सबकी फरमाइशें पूरी कर पाऊँ। एक और फरमाइश मेरे पास आई हुई है जफर जी की, जो लता मंगेशकर जी का गाना सुनना चाहते हैं। कुछ ही देर में आपकी पसंद का गाना भी अभी हाजिर हो जाएगा। तो दोस्तों, गीत संगीत अभी कुछ देर और चलता रहेगा, लेकिन घड़ी की सुइयों ने मुझे जाने का इशारा कर दिया है। जाते जाते मेरे सभी श्रोताओं का धन्यवाद और स्पेशल मेंशन सभी को जिन्होंने मैसेज भेजकर मेरा साथ दिया। राजेंद्र बोहरा जी, अभय जी, हर्षवर्धन शर्मा जी, जफर, असद अहमद जी, उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का शो पसंद आया होगा। कल फिर से हम हाजिर हो जाएंगे एक नए प्रोग्राम, नई खबरों, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहतमंद रहें और मुझे दीजिए इजाजत। SBS हिंदी के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे स्वाति शर्मा को। शुभ रात्रि।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।